समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे यानी प्राची प्रिया को कार्यक्रम आज सवेरे में। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रस्तुत करता है अनीता आनंद। इस कार्यक्रम में हम पहुंचाते हैं आप तक तमाम खबरें और नवीनतम जानकारियां, साझा करते हैं आपसे खेल की खबरें और आज का इतिहास भी। इतना ही नहीं बल्कि अंत में याद करते हैं हम और आप मिलकर उन लोगों को जो वाबस्ता हैं आज के दिन से। स्वीकार कीजिए प्रणाम एक बार फिर प्राची प्रिया का और इजाजत दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे को आगे बढ़ाने की।
हेलो प्राची, गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन आज सवेरे, वेर इन वी हैव द लेटेस्ट इन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 23rd ऑफ ऑगस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस। United Nations Secretary General has expressed hope that Prime Minister Narendra Modi's visit to Ukraine will contribute to ending the war. His spokesperson Stephen Dujarric said, asked for a reaction to Prime Minister Modi's visit to Ukraine amid the war, Dujarric said, "We have seen a lot of heads of state and government travel to the region and we hope that all of these visits will bring us closer to an end of the conflict in line with General Assembly resolutions, international law and the territorial integrity." The UN General Assembly has demanded an end to the Russian military operation in at least 3 resolutions and in another to stop attacks on Ukraine's infrastructure.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड की ऐतिहासिक यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने इस दौरान वर्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा के साथ बैठक की। श्री मोदी ने इस यात्रा को विशेष बताते हुए पोलैंड को भारत का मूल्यवान मित्र बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने पोलैंड के लोगों और सरकार को उनके स्वागत के लिए धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों में नई उपलब्धियां हासिल की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 4 दशकों बाद प्रधानमंत्री की यह उच्च स्तरीय यात्रा भारत और पोलैंड के बीच संबंधों को व्यापक और प्रगाढ़ बनाएगी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दशकों बाद पोलैंड की यात्रा होने के कारण इसे भारत और पोलैंड के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया। श्री टस्क ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर श्री मोदी की मेजबानी करने को बड़ा सौभाग्य बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। श्री मोदी और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा ने खाद्य प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों में भारत और पोलैंड के बीच साझेदारी प्रगाढ़ करने पर चर्चा की।
Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu has launched the guidelines for seaplane operations under RCS Udaan. The guidelines prioritize the safety and security of seaplane operations and clearly outline the responsibilities of each stakeholder from the operators to the regulatory bodies. The guidelines ensure seamless and efficient rollout of the seaplane operations across the nation. Speaking on the occasion in New Delhi, Mr. Naidu said that the guidelines aim to connect remote areas of the country and make travel more accessible for all. He added that after the success of RCS Udaan, the government is considering to propose RCS Udaan 2.0 for the next 10 years.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमरीका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका की 4 दिवसीय यात्रा पर कल शाम वॉशिंगटन पहुंचे। यात्रा के दौरान श्री सिंह ने अपनी अमरीकी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री अमरीका के रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वर्तमान में चल रहे तथा भविष्य में होने वाले अन्य कार्यक्रमों पर भी एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पिछले वर्ष नवम्बर माह में हुए पांचवे वार्षिक भारत अमरीका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के बाद भारत और अमरीका ने द्विपक्षीय रक्षा पहलों की प्रगति की सराहना की है। अमरीका ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, रक्षा तथा औद्योगिक सहयोग के लिए भारत और अमरीका के बीच सहयोग को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के लिए समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों ने जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा शुरू किए गए ICT कार्यक्रम के जरिए अपनी आपसी रणनीति साझेदारी और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर जाएंगे। उपराष्ट्रपति गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। श्री धनखड़ अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में धर्म धम्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
The government has said that 2.67 lakh new workers have been enrolled under the employee state insurance scheme in the month of June this year. The addition of new employees registered a growth of 7% as compared to the same period during the last year. As per provisional payroll data released by Employee State Insurance Corporation, 10.58 lakh employees amounting to around 49% of the total registrations belong to the age group of up to 25 years. Around 13,483 new establishments have been brought under the Social Security ambit of the ESI scheme, ensuring security to more workers.
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पिछले महीने मिस्र के काहिरा में विश्व बोकिया चैलेंजर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों से कल मुलाकात की। डॉ मांडविया ने एथलीटों की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर बधाई भी दी। भारत ने चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य सहित कुल पांच पदक जीते थे।
पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फिनिश सेकेंड ऑन द मेन्स जैवलिन थ्रो इवेंट एट द लॉसान डायमंड लीग 2024 कंपटीशन इन स्विट्जरलैंड लास्ट नाइट। द स्टार इंडियन एथलीट प्रोड्यूस्ड हिज सीजन बेस्ट थ्रो ऑफ 89.49 मीटर्स टू फिनिश सेकेंड बिहाइंड ग्रेनेडियन एस Peters Anderson, who reached 90.61 meters in his final attempt. Anderson, a bronze medalist at the 2024 Paris Games, dominated the event from the start and finished with a record 90.61 meters through. Germany's Julian Weber finished third with his best throw of 87.08 meters. The Lausanne Diamond League meet was the fifth competition of the season for Neeraj Chopra. The Brussels Diamond League final will be his final event of the season.
खेलो इंडिया अस्मिता विश्व लीग पश्चिम क्षेत्र कल से उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुरू होगी। चार दिन की ये लीग 27 अगस्त तक चलेगी। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात सहित पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की महिला एथलीट भाग लेंगी। इसका सीधा प्रसारण खेलो इंडिया विमेन्स लीग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा।
And today is the first National Space Day being celebrated across the country. President Draupadi Murmu will inaugurate the main function, which will be held at Bharat Mandapam in New Delhi. The theme of this year's celebration is Touching Lives While Touching the Moon, India's Space Saga, which emphasizes the profound impact of space exploration on society and technology. On the occasion of National Space Day, the President will honor the winners of the Robotics Challenge and Bharatiya Antariksh Hackathon. We have a report.
On this day last year, Chandrayaan 3 mission accomplished safe and soft landing of the Vikram lander on the lunar surface. With this achievement, India has joined the elite group of space-faring nations, becoming only the fourth nation to land on the surface and the first nation to land near the south pole of the moon. The soft landing was followed by a successful deployment of the Pragyan rover. The landing site was named as Shiv Shakti Point and 23rd August was declared as the National Space Day. The National Space Day recognizes significant achievements in space exploration and highlights advancement in space technologies. India's foray into space research started in the early 1960s and progressed steadily by developing niche technologies. Pallavi Parmar for Akashvani News, Delhi.
And over to Metro News from Chennai and Bengaluru. On the occasion of National Space Day celebration, Space Kids India and Hexaware have jointly organized the 10th edition of Young Scientists India at Chennai. Two cosmonauts, Sergei Korsakov and Aydin Aimbatov, will grace the occasion. There will be an interaction session and experience sharing during the event. Children who won the finale in innovation will also be attending the function. And in Bengaluru, the Indian Institute of Astrophysics will celebrate National Space Day in commemoration of the landing of Chandrayaan 3 on the surface of the moon at Shiv Shakti Point. It will organize public talks on space missions and another on why astronomers need to place telescopes in space. Another talk will be on astronomy from space missions of India. The Raman Research Institute will also celebrated the National Space Day today. About 150 students from 7 schools were given exposure to scientific models that the institute had developed in quantum and astronomy domains. Also from Chennai, Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh released a photo book entitled Madras to Chennai on the occasion of Madras Day. This book is a part of the Shining Tamil Nadu series, showcasing the city's rich history and heritage through stunning photographs. The book, published by the Tamil Nadu Textbook and Education Services Corporation, is the first in the series of photo books that will highlight the state's culture, architecture and more of Chennai. The 280 black and white photographs capture the city's iconic landmarks. It also contains photos taken during the COVID-19 pandemic, offering a glimpse into the city's unusual quiet during that time. Each photograph is accompanied by historic notes providing context and significance. And the Karnataka Forest and Environment Minister, Ishwar Khandre, has advised the deputy commissioners of all the districts to ban POP Ganesh idols and crackers during the Ganesh Chaturthi festival next month. He was speaking after attending a video conference along with the district administration and chief secretary Shalini Rajneesh. He said that both POP Ganesh idols and crackers pollute the environment. He asked the officials to alert commercial tax department, transport department and police to keep an eye on the sneaking in of POP idol into the state. He said that the authority is giving permission for community Ganesh idol pandals, must ensure that the organizers do not install POP Ganesh idols with toxic colors and must give a written undertaking that they will not burst crackers. And now for Metro City News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Prachi.
Bilkul. दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड NCWEB ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट आज जारी कर दी है। इस कट ऑफ के आधार पर आज से इस महीने की 25 तारीख तक दाखिला लिया जा सकता है। इस कट ऑफ के दाखिले के बाद अगली लिस्ट 30 अगस्त को जारी की जाएगी। छात्र प्रवेश प्रक्रिया और कट ऑफ की लिस्ट से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत गोल्डन लाइन कॉरिडोर के छतरपुर से छतरपुर मंदिर स्टेशन के बीच 865 मीटर सुरंग निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। इस निर्माण के आखिरी चरण के समय दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत सहित दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। राजधानी में आज श्रीकांत फिल्म की एक विशेष सांकेतिक भाषा स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि श्रीकांत जैसी फिल्में न केवल दिव्यांग व्यक्तियों को बल्कि सक्षम लोगों को भी प्रभावित करती है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सांकेतिक भाषा में इस फिल्म की स्क्रीनिंग भारतीय सिनेमा में अपनी तरह की पहली स्क्रीनिंग थी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए अधिक फिल्में सुलभ होनी चाहिए। श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों को शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कल शिल्प दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हाट में चल रहे शिल्प दीदी महोत्सव का दौरा किया। ये महोत्सव 16 अगस्त से शुरू हुआ जो 31 अगस्त तक चलेगा। इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह ने शिल्प दीदियों से बातचीत की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को जाना। श्री सिंह ने कहा कि ये महोत्सव शिल्प दीदियों को अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने तथा अपने हस्तशिल्प निर्माण के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करता है। आकाशवाणी से बातचीत में कोलकाता की कांथा कलाकार शिप्रा घोष ने बताया कि उनका परिवार चार पीढ़ियों से इस कला को व्यवसाय के रूप में अपना रहा है। वे हाथ से मुद्रित रेशम और दुपट्टे का उत्पादन कर रहे हैं। बिहार की मधुबनी कलाकार सपना ने कपड़ा मंत्री से अपनी मूल भाषा मैथिली में बातचीत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिल्प दीदी कार्यक्रम ने अपने काम को प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। इस गठन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एसोसिएशन परिसंघ और दिल्ली सरकार के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। ये निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अपील और निर्देश को देखते हुए किया गया। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक बयान में कहा कि वे आर्चिकर मेडिकल कॉलेज की घटना का संज्ञान लेने और देशभर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना करते हैं। डॉक्टरों के एसोसिएशन ने राष्ट्रीय कार्यदल के गठन का भी स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे मुद्दों का शीघ्र और प्रभावकारी समाधान किया जा सकेगा। आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी चिंताएं दूर करने के प्रयासों को देखते हुए हड़ताल समाप्त करने का निर्णय किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। चलते हैं अब मुंबई समाचार की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के साथ समन्वय के लिए पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने हॉस्टल और वजीफे से संबंधित मामलों सहित निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया। स्वीडन और पाकिस्तान में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों के जवाब में बृहन्मुंबई नगर निगम ने अंधेरी के सेवन हिल्स अस्पताल में मंकीपॉक्स रोगियों के लिए 14 बिस्तरों वाला एक विशेष वार्ड स्थापित किया है। बीएमसी ने नागरिकों से बीमारी के बारे में चिंता न करने का आग्रह किया है क्योंकि शहर में अभी तक मंकीपॉक्स का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। 21 अगस्त 2024 को एक समन्वय बैठक आयोजित की गई जिसमें मंकीपॉक्स पर चर्चा करने के लिए हवाई अड्डा स्वास्थ्य अधिकारी, आव्रजन अधिकारी और कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल थे। बीएमसी ने कहा कि यदि किसी भी यात्री को मंकीपॉक्स होने का संदेह है तो उन्हें अलगाव और आगे के इलाज के लिए सेवन हिल्स अस्पताल में भेजा जाएगा। रुक करते हैं कोलकाता समाचार की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते दुष्कर्म के अपराध के मामले पर गौर करने का अनुरोध किया है। ममता ने कहा कि भारत में प्रतिदिन 90 दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं और ये दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ममता ने यह भी कहा कि तुरंत एक केंद्रीय कानून लाया जाए और इन मामलों से निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। और अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। वहीं कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है।
Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 27 degrees and the maximum will be around 35 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees and the maximum will be around 30 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius. And time now to remember the events that happened on this day in history. We begin with 1839, Britain captured Hong Kong, signaling the ominous prelude to the Opium War against the Qing Dynasty of China. In 1942, it witnessed the climactic Battle of Stalingrad, a grim and brutal confrontation that would prove a watershed moment in the conflict. In the year 1966, shown as a luminous milestone with Lunar Orbiter 1 capturing an unprecedented photograph of Earth from the vantage point of the moon's orbit. In 1958, Marathwada University was started, and in the year 1995, first ever cellular phone service begins in Calcutta.
और आज के ही दिन सन 1999 में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच मान्यता संबंधी मुद्दों पर वार्ता पुनः प्रारंभ हुआ। आज के ही दिन सन 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण रोका। इटली ने पाकिस्तान में वाणिज्य दूतावास बंद करने की धमकी दी। आज के ही दिन सन 2007 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर 2007 में ऋग्वेद की 30 पंडुलिपियां शामिल की गईं।
And in the year 2000, India and Japan unveil a new global partnership and agree to start a formal security dialogue. Today is also the International Day for the Remembrance of Slave Trade and its Abolition. The International Day celebrated on this year, that is the 23rd of August each year. The day is designated by the UNESCO to memorialize the transatlantic slave trade, and this date was chosen by the adoption of resolution by the organization's General Conference at its 29th session. The date is significant because during the night of the 22nd and 23rd of August in 1791, the island of St. Domingue had an uprising which set forth events which were a major factor in the abolition of the transatlantic slave trade. UNESCO member states organize events every year on this date, inviting participation from young people, educators, artists and intellectuals. As part of the goals of the intercultural UNESCO project, the slave route is an opportunity for collective recognition and focus on the historic causes, the methods and the consequences of slavery. Additionally, it sets the stage for analysis and dialogue of the interactions which give rise to the transatlantic trade in humans being between the India, Africa, Europe, Americans and the Caribbean. And now we go over to the segment where we remember people who either born this day or who passed away today. And we begin this segment by remembering Eugene Kelly, the American dancer, actor, director, singer, and choreographer. He was known for his energetic and athletic dancing style and sought to create a new form of American dance accessible to the general public, which he called Dance for the Common Man. He starred in, choreographed with Stanley Donen, co-directed some of the most well-regarded musical films of the 1940s and 50s. Kelly is best known for his performances in An American in Paris, which won the Academy Award for Best Picture, Singing in the Rain, which he and Donen directed and choreographed, and other musical films of that era, such as Cowgirl, Anchors Away, for which he was nominated for the Academy Award for Best Actor. I'm playing a snippet from Singing in the Rain.
Glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.
और सन 60 और 70 के दशक में जिस अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा और उसके दर्शक वर्ग के दिलों पर राज किया वो और कोई नहीं बल्कि सायरा बानो है। आज उनका जन्मदिन है। सायरा विलायती पढ़ाई करके जब भारत लौटी तब से ही यानी स्कूल से ही उन्हें अभिनय से लगाव होने लगा था और स्कूल में उन्हें अभिनय के लिए कई पदक भी मिले। जब सायरा बानो फिल्मों में उन्हें जब लॉन्च किया गया तो उनकी माँ जो कि अपने समय की बेमिसाल अदाकारा और खूबसूरती का अलंकार मानी जाती थी उनके सर का ताज दर्शकों ने सायरा के सिर पर रख दिया। सुनिए सायरा बानो पर फिल्माए चंद गीत।
Saira made her acting debut with Jungli, for which she received the Filmfare Award for Best Actress with the very first film. She received 3 more Best Actress nominations for Shagir, Diwana and Sagina. Banu went on to be a part of most successful films including Bluffmaster, Aaye Milan Ki Bela, Jhuk Gaya Aasman, Padosan, Victoria No. 203, Hera Pheri and Bairag. Her final film before retirement was Faisla, released in 1988. She married, we all know, the famous actor Dilip Kumar. And moving on, today is the birth anniversary of Krishna Kumar Kunnath, popularly known as KK, the Indian playback singer. He passed away very early in his singing career. He recorded songs primarily in Hindi, Tamil, Telugu and Kannada language.
बिल्कुल अनीता, जैसा अभी आपने बताया कि उन्हें प्यार से लोग KK बुलाते आए हैं, आज उनकी जयंती है। वो हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में प्रमुख गायक रहे। केके ने अपने दोस्तों के साथ एक रॉक बैंड का भी गठन किया था। मशहूर गायक किशोर कुमार और संगीत निर्देशक जो रहे हमारे आर डी प्रधान ने केके को बहुत प्रभावित किया था, जहां तक कि मैं सही याद कर पा रही हूं। विख्यात फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने केके को बॉलीवुड में गाने का पहला मौका दिया। उन्होंने बॉलीवुड में अपना कार्यकाल जो है जो एक गाने का जो एक जो मतलब शुरू किया जो उन्होंने है ना, वो माचिस की फिल्म से किया और उसका नाम था छोड़ आए हम वो गलियां।
एंड सम सॉन्ग्स संग बाय हिम।
लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल था फकीर आज दिल शहजादा है। लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ। क्या ये सबको होता है,
हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ।
खुदा जाने के मैं फिदा हूँ।
लवली सॉन्ग सॉन्ग बाय हिम। कोई कहे कहता रहे, Dola Re Dola from Devdas and Das Bahane Kya Mujhe Pyar Hai, Tu Hi Meri Shab Hai. I mean, the songs are immortal.
Bahut hi khoobsurat gaane gaaye
hain. And chalte chalte, we also have one more sports person. We are talking about Kobe Bryant, the professional basketball player, shooting guard, spent 20 years career in Los Angeles Lakers National Basketball Association.
Aur ab kyunki samay ho chala hai aapse vida lene ka, to anumati dijiye karyakram aaj savere ko yahi samapt karne ki.
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.